Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसे मुख का संबंध सर्वत्र है, लेकिन जो स्वच्छ पदार्थ दर्पण है वहां पर मुख की अभिव्यक्ति होती है स्वच्छता के कारण। इसी प्रकार से जड़ में ही परमात्मा है और शरीर में ही परमात्मा है, लेकिन चैतन्य की अभिव्यक्ति जड़ पदार्थ जो घटपटादि है उसमें नहीं होती है। और ये सूक्ष्म शरीर है, ये इसमें सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण चेतन के व्यक्ति यहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा को ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। देखो, यद्यपि परमात्मा शरीर नहीं है, लेकिन इशारा शरीर की ओर करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को पहले दृष्टांत बता दिया कि जो विद्युत जो है वो तार भी विद्युत नहीं है, बल्ब भी विद्युत नहीं है, और बल्ब का प्रकाश भी विद्युत नहीं है। लेकिन विद्युत कहाँ है, आप क्या उपदेश करेंगे? ये देखो, उधर जो दिख रहा है ना बल्ब, वो विद्युत है। तो विद्युत तार है क्या? विद्युत तार भी नहीं है और विद्युत बल्ब भी नहीं है, है ना? लेकिन विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब में होती है। विद्युत की अभिव्यक्ति जहां पर होती है उधर इशारा करना पड़ता है, हो गए कि नहीं? इसी प्रकार शरीर मन बुद्धि ये चेतन नहीं है, ये तो दृश्य है, परमात्मा दृश्य नहीं है। यद्यपि ये दृश्य परमात्मा नहीं है स्वरूप से, फिर भी यहां पर चेतन के अभिव्यक्ति होने के कारण इधर इशारा करना होता है। परमात्मा का अभिव्यक्ति का स्थान है, और ये जो परमात्मा है सबका शासक है, केवल शरीर का शासक नहीं है, सबका शासक है। देखो, अनात्मा जो बाह्य पदार्थ है इसका भी शासक है, ये शरीर का भी शासक है, लेकिन परिच्छिन्नता ये शरीर में हो रही है। शरीर में परिच्छिन्नता के कारण ये व्यक्ति जीवात्मा अपने आप को परिच्छिन्न समझता है। ये कह रहे हैं, देखो, ईशानम भूत भव्यस्य, भूत भविष्यत और अतीत, है ना? ये काल हो गए, काल। ये काल जो है आत्मा को नहीं खा सकता है, लेकिन आत्मा को काल तो नहीं खा सकता है, बात तो ठीक है। काल काल खा रहा है शरीर को, काल के मुंह में शरीर है। शरीर पहले नहीं था, देखो, और शरीर का जन्म हो गया, तो काल के मुंह में ग्रसित तो शरीर है, लेकिन शरीर के साथ जो अहमता कर लिया तो काल अपने को भी खाएगा। खाएगा कि नहीं? मेरा जन्म हुआ कौन सा तारीख लिख कर रखा जाता है, तो आजकल तो बड़ी विलक्षणता होती है कि महात्मा लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं। ये माया का खेल है, देखो, ये माया जो है ना, ये महात्मा को भी नहीं छोड़ती है ना? भाई, गृहस्थ तो मनावे ठीक है ना, परमात्मा का मनावे प्राकट्य महोत्सव, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना? लेकिन महात्मा का भी जन्मदिन ये परंपरा नहीं है। देखो, महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है, ध्यान दे रहे ना भैया, है ना? इसलिए बुरा नहीं मानना आप लोग, ये परंपरा नहीं है। देखो, महापुरुष का जन्मदिन मनाना ये परंपरा नहीं है, लेकिन चल जाती है परंपरा कलयुग में, है ना? तो ये माया का खेल है। हाँ, यद्यपि यदि आप इस प्रकार की भावना हो कि वो महापुरुष तो भगवान है, परमात्मा है, वही कह बहुत लोगों के मनाते हैं, केवल एक नहीं है। यदि आपकी ऐसी भावना है, उस महापुरुष में भगवान कृष्ण की तरह अपने इष्टदेव की तरह यदि भावना है, तो आप मना सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन परंपरा नहीं है। असाधारण समझते हैं, परमात्मा नहीं समझते हैं, तो उस व्यक्ति का जन्म महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। तो देखो भैया, तो काल से परिच्छिन्न शरीर है, काल इस शरीर को खा रहा है, लेकिन इस शरीर में यदि अहमता हो गई, धर्मी अध्यास, इसको कहते धर्मी अध्यास, धर्मी यदि अध्यास हो गया धर्म अध्यास भी हो जाएगा। शरीर को यदि आपने मैं मान लिया तो शरीर का धर्म भी अपने में आ जाएगा। तो शरीर काल से परिच्छिन्न है, इसलिए आत्मा भी काल से परिच्छिन्न हो जाएगा, है ना। तो काल परिच्छेद आत्मा में नहीं है, काल परिच्छेद तो उसी का होता है जो पहले ना हो। शरीर पहले नहीं था, शरीर का प्रागभाव था, तो जिसका प्रागभाव होता है उसको कहते हैं काल परिच्छिन्न, प्रागभाव प्रतियोगी काल परिच्छिन्न, है ना। अथवा जिसका ध्वंस होता है, शरीर का राम नाम सत्य होगा, शरीर बाद में नहीं रहेगा, ये शरीर कैसा हो गया, काल परिच्छिन्न हो गया, है ना। ये आत्मा तो पहले से भी है और अभी भी है और आगे भी रहेगा भाई, ये काल से परिच्छिन्न आत्मा नहीं हो सकता है, है ना। और यहां पर भी ये उपलक्षण समझ लो कि भाई देश से परिच्छिन्न भी नहीं होगा। आत्मा किस देश में ना हो ऐसा कोई भी स्थान देश आप नहीं कह सकते, एक जगह पर हो और एक जगह पर ना हो, शरीर यहां पर है और वहां पर नहीं है आपका शरीर, हो गया कि नहीं। तो शरीर कैसा हो गया, देश परिच्छिन्न, जिसका अत्यंत अभाव होता है उसको कहते हैं देश परिच्छिन्न। तो आत्मा तो भाई सर्वव्यापक है, आकाशवत सर्वगतस्य नित्यम का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अनंत कहने से व्यापक हो गया, तो व्यापक पदार्थ का अत्यंत भाव एक जगह पर हो और एक जगह पर ना हो ऐसा नहीं होता है, है ना। तो अनंत शब्द कह करके श्रुति व्यावर्तन करती है कि किसकी, देश परिच्छिन्नता, आत्मा सर्वत्र है। तो इस प्रकार अनुभूति हो या ना हो अभ्यास करते रहना चाहिए वेदांत का, ये देखो ऐसा है ना। अनुभूति अभाव सर्वदा अनुचिंतता, है ना, वेदांत की आपको अनुभूति हो या ना हो, आम अस्मि ब्रह्म इसका जप करिए तो फल मिलेगा कि नहीं भैया। अनुभूति ना हो और फल ना मिले, फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, श्रद्धा से रखते हैं तो कम से कम चित्त तो शुद्ध होगा, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं ओम ब्रह्मास्मि का महावाक्य है। और जो है भाई ये कह दिया सत्यम, कह दिया देखो सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहने से, सत्य कहने से क्या हो गया, जो भाई प्रागभाव नहीं रहा, प्रागभाव नहीं रहा, है ना, मतलब काल परिच्छिन्न नहीं हुआ, आत्मा सर्वदा है, ये कह दिया। और एकमवाद्वितीयम्, ये आत्मा कैसा है, एकमवाद्वितीयम्, तो एकमवाद्वितीयम् करने से क्या हो गया, वस्तु परिच्छिन्न से रहित हो गया। ये देखो चश्मा पुस्तक नहीं है और पुस्तक चश्मा नहीं, तो भेद आ गया कि नहीं, भेद आ गया भी। इसको कहते हैं वस्तु परिच्छिन्न, इसी का नाम क्या है, वस्तु परिच्छिन्न है। लेकिन ये ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म ही है संसार में, ब्रह्म से अतिरिक्त है सर्वम खलेदम ब्रह्म, इन पारमार्थिक तो सत्ता तो ब्रह्म की ही है और किसी की नहीं है, इसलिए वस्तु से परिच्छिन्न भी नहीं होगा। एक ही आत्मरूपी पर्दा ही अनेक चित्र रूप से दिखता है, तो कहां भेद हुआ फिर, चित्र यदि आत्मरूपी पर्दा से भिन्न होता, ये जागरण स्वप्न अविद्या भी चित्र ही है और क्या है, ये अविद्या जो है ना अपने, ये भी चित्र ही है, चित्र से कहा अतिरिक्त है, ओके करिए। तो जागरण स्वप्न सुसुप्ति जो अविद्या है, चित्र जो है ना, ये आत्मरूपी दर्पण से भिन्न नहीं है, ओके कि नहीं, जो देव भागवत सुन रहे थे ना, शक्ति शक्ति मतो रवेद, शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है। आगे सुनिए, माया शक्ति परमात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान में वस्तु परिचिन्न नहीं है। यदि अलग होता, माया यदि अलग होती और माया का खेल चित्र ये यदि अलग होता, तब तो वस्तु परिचिन्न होता। ये उपलक्षण समझ लो, इसमें किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं है परमात्मा में। तो इस प्रकार का यदि ज्ञान हो जावे, ततः इस प्रकार का यदि अनुभूति, इस प्रकार की अनुभूति हो जावे अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से जो अनुभूति हो जावे, न ततः भी जुगुप्सते। तो आत्मा, आत्मा की रक्षा की इच्छा नहीं होगी। देखो भाई, अपनी इच्छा, अपनी रक्षा की इच्छा कैसे करेगा? अपने से दूसरा कोई हो तब तो इच्छा होती है, और ऐसा भी अर्थ होता है तो किसी से घृणा नहीं करता है। आत्मा से अतिरिक्त कोई हो, घृणा का कोई हेतु हो, द्वैत दर्शन हो, तब तो घृणा करेगा। तो जिसका ज्ञान होने पर ये अविद्या की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वही परमात्मा तत्व है, वही तुम्हारा जिज्ञास्य है। अरे जो आत्म तत्व है, जो सबको सत्ता दे रहा है, वो कैसा है? तो स्वरूप बताते हैं। देखिए, ये जो परमात्मा है चेतन भी है। देखो, और कैसा चेतन? ये घटपट का ज्ञान जो हो रहा है ऐसा चेतन नहीं है, शुद्ध चेतन है। इसलिए बोलते हैं, अंगुष्ट मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधुमक ईशानो भूत भव्यस्य स एवा स एवाद्य स उस्व एतद वैत। देखो कहते हैं, ये जो पुरुष जो परमात्मा है, जगत का कारण अधिष्ठान, तो उसके व्यक्ति शरीर में हो रही है, तो अंगुष्ट मात्र बोल दिया। लेकिन ज्योति, ज्योति ज्योति मतलब प्रकाश, अग्नि, और अग्नि भी जो है ना, दो प्रकार समझ लो भाई। एक अग्नि में तो धुआं नहीं होती है, काष्ठ यदि सूखा हो तो अग्नि में धुआं नहीं उठेगी, और एक अग्नि में धुआं उठती है। कौन सी अग्नि में? जब अग्नि का संबंध गीली लकड़ी के साथ हो जाएगा, तो गीली लकड़ी के साथ जब अग्नि का संबंध हो जाएगा तो धुआं उठेगी, हो गए कि नहीं? इसी प्रकार जो परमात्मा है, स्वरूप से कैसा है? अधुमक। यहां पर पुलिंग है तो नपुंसक कर लीजिएगा, अधुमकम है ना। इसमें किसी प्रकार के धुआं नहीं है, धुआं नहीं है। और अभी कैसा है? ये घट ज्ञान है, पट ज्ञान है, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अभी धुआं उठ रही है। देखो, धुआं उठ रही है ना, क्योंकि संसार कैसा जो आसक्त हो गया कि नहीं, ये पहले आप लोगों को बताया, ये संसार कैसा है कि गीली लकड़ी के तरह, गीली लकड़ी है, तो गीली लकड़ी है ना। यदि लकड़ी यदि गीली हो ना, गीली हो, आर्द्र ईंधन बोलते हैं, है ना, तो अग्नि जो है ना ठीक से जलती नहीं है, धुआं उठती है ना। इसलिए ये संसार भी जो है ना, संसार से रस मिल रहा है, संसार से रस जो मिल रहा है ना, ये संसार कहां सूखता जल्दी, ये संसार कहां निरस होता है? जब तक आप विचार नहीं करेंगे, विवेक नहीं करेंगे, ये संसार सूखेगा नहीं। और जब तक नहीं सूखेगा तो वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान तो हो सकता है, हो गए कि नहीं? संसार के प्रति, संसार के प्रति वैराग्य न होने पर भी संसार का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान कैसा हो जाएगा? धूमका हो जाएगा, धूमका हो धुआं उठेगी, अद्वैत ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों को बता दिया, तो जिस व्यक्ति के लिए संसार निरस हो गया, साधन तत्व संपन्न के लिए संसार कैसा हो गया, निरस हो गया, सूखी लकड़ी की तरह हो गई, उसी को गुरु जला सकता है ज्ञानाग्नि के द्वारा, नहीं तो नहीं जला सकता है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा का स्वरूप कैसा है, अधूमक ज्योति। तो तुम्हारा मन यदि संसार से हट गया, संसार तो अनात्मा है, ये तो भासने वाला है, कल्पित है, ये यदि ज्ञान हो जाएगा तो कैसा होगा, केवल अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञानी होगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। आपने यदि सबको दृश्य कोटि में डाल दिया, घटपट आदि जैसे भास रहे हैं, शरीर मन बुद्धि भी भास रहे हैं, मन भी जब भासेगा घटपट आदि की तरह, तो आपका स्वरूप कैसा होगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान होगा, चेतन चेतन रहेगा। और अभी कैसा है, मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्यत्व भी आ गया, देखो ना, शरीर में मैं करके आप बोलते हैं कि ये मैं हूं, तो मन विशिष्ट चेतन को आप मैं समझ रहे हैं, तो मैं कहने से भाई दो आ गए कि नहीं, चेतन भी आ गया और आपका मन भी आ गया, तो मन को जब मैं समझ लिया तो मन का धर्म भी आएगा, आपके पास सुख दुख भी आएगा, है ना। इसलिए यहां पर बोलते हैं चेतन जो है परमात्मा का स्वरूप ज्योति, ज्योति अधूमक, जिसमें किसी प्रकार की धुआं, किसी प्रकार का भेद ना हो, ऐसा निर्मल ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। और वही माया को लेकर के समस्त जगत का शासक है, और सैव अद्य वो पहले भी है और अभी भी है, अद्य परमात्मा की सत्ता वर्तमान में भी है और उपलक्षण पहले से भी है। आज शरीर छोड़ गया तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यदि नहीं रहेंगे तो फिर दान पुण्य क्यों करते हैं, है कि नहीं। तो भले ही अविद्या अवस्था में दान पुण्य करिए, फिर भी आपको क्या मालूम पड़ता है कि शरीर तो छूट जाएगा, मैं रहूंगा, यदि इससे जो पुण्य होने वाला है उसका मैं भोक्ता बनूंगा, है ना। यदि आत्मा यदि ना रहे तो क्या होगा, कृता हानि, इसको बोलते हैं कृता हानि, जो आपने पुण्य किया वो बेकार हो गया, कौन भोगेगा उसको। और आत्मा यदि पहले नहीं था तो अकृत अभ्यागम, ये दोष आएगा। आत्मा नहीं था मतलब पाप पुण्य भी नहीं हुआ, फिर आत्मा यदि पहले रहा होगा तब ना पाप पुण्य रहा होगा, अब पाप पुण्य नहीं है फिर ये फल का बहुत फल मिल रहा है, ये दोष आएगा। इसको कहते हैं अकृत अभ्यागम और कृत हानि, इसलिए आत्मा की सत्ता है सर्वदा, लेकिन पहचान करानी पड़ती, देखो पहचान करानी पड़ती है ना, कि परमात्मा की प्राप्ति तो हमेशा है, बंधन अवस्थाएं परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन पहचान नहीं है। मान लो भी आपके घर में पारसमणि का पत्थर हो और आपको यदि ज्ञान ना हो तो आप क्या करेंगे, बराबर है ना भैया, आप कब तक पिसेंगे, नहीं कह सकते, 10 जन्म 20 जन्म 100 जन्म तो भी जाएगा। पारसमणि देखो आपके पास है कि नहीं, पारसमणि का पत्थर है और आपने सुन लिया कि पारसमणि पत्थर है, उसका क्या महत्व है, उसका स्पर्श होने से लोहा भी जो है सुवर्ण बन जाता है। आप ढूंढ रहे जंगल में पहाड़ में, आपके घर में जो पारसमणि का पत्थर है आप ढूंढ रहे हैं बाहर, है ना। लेकिन जब तक पारसमणि यही है, ये ज्ञान नहीं हो रहा है, तब तक आपकी दरिद्रता, आप हम भी इसमें है तो, दरिद्रता कभी जाने वाली नहीं है। इधर शास्त्र जो है, गुरु मुख से पहचान कराता है, ये तुम्हारा तत्व है। और ऐसी जो पहचान यदि ना हो तो क्या होगा, कोई बता दिया दरिद्रता जाएगी हमेशा। दृष्टांत बता रहे हैं, दो मंत्र है, पांच मिनट समय लगेगा, पूरा हो जाएगा। जथोदकम दुर्गे बृष्टम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान पृथक पश्यास तान एवानो विधावति। देखो कहते हैं ये जो आत्मा है, आत्मा आत्म तत्व ऐसा है कि जिसके साथ लग गया तो तद्रूप होकर के मालूम पड़ता है। मान लो मन में कामना हो गई, कामना हो गई, और मन में कामना हो गई तो आत्मा कैसा मालूम पड़ता है? मैं कामी हूं, तो आत्मा कामी है क्या? आत्मा कामी नहीं है। और मन में क्रोध आ गया तो आत्मा कैसा हो गया? देखो क्रोधी हो गया। आत्मा ना कामी है ना आत्मा क्रोधी है, लेकिन मन के साथ संबंध हो गया तो तद्रूप होकर मालूम पड़ता है। आत्मा तो वे कामना का भी दृष्टा है और क्रोध का भी दृष्टा है, तो आत्मा कहां कामी हुआ स्वरूप से? लेकिन आत्मा की ऐसी महिमा होती है कि जिसके साथ लग गया, संपर्क हो गया, संबंध हो गया, संसर्ग अध्यास हो गया आत्मा का, आत्मा का संसर्ग अध्यास जिसके साथ हो जाएगा, आत्मा तत्रूप होकर के मालूम पड़ता है। इसमें दृष्टांत बता रही है श्रुति। देखो जैसे कोई स्थान हो, पहाड़ी का स्थान हो, पर्वतीय स्थान हो, और उसमें जो वृष्टि हो गई, जल गिर गया, तो ऊपर जो गिरने वाला है आकाशस्थ जल, गिरने से पहले उसका क्या नाम है भाई? केवल जल ही है, क्या नाम है? वो जल ही है ना गिरने से पहले। लेकिन पहाड़ में गिर गया, और नाला जो होती है ना नाला, हाँ नाला के साथ संबंध हो गया तो गंगा जी बन गए, और क्या हो गए कि नहीं? नाला के साथ पड़ करके जल बिखर जाता, देखो बिखर जाएगा, अब बिखर जाएगा और नाला के साथ संबंध होने पर उसका नाम अलग हो गया। देखो उसका नाम अलग हो गया, उसका रूप अलग हो गया, हो गया कि नहीं? लेकिन स्वरूपतः जल का ना कोई गंगा जी का नाम है, ना जमुना का नाम है, ना कोई अलग रूप है, देखो है ना। इसी प्रकार से दृष्टांत में आत्मा का ना वास्तविक कोई नाम है, ना आत्मा का कोई वास्तविक रूप है। और शरीर रूपी नाला में पड़ गया तो शरीर को मैं मान लिया तो मनुष्य हो गया कि नहीं, है ना? और देवता शरीर में गया तो देवता बन गया भी, हो गया कि नहीं? और इसी प्रकार साधक के दृष्टि में, है ना, संघार शक्ति में जब प्रतिबिंबित हो गया तो उसका नाम क्या हो गया? शंकर हो गया, और क्या? और उत्पत्ति शक्ति में यदि हो गए तो उसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मा जी हो गए भैया, है कि नहीं? और स्थिति शक्ति में सम्मिलित हो गया चेतन, विष्णु नाम हो गया, हो गया कि नहीं, है ना? और मान लीजिए सिर काट करके यदि हाथी का सिर लगा दिया तो उसका नाम क्या हो गया? है देखो, है कि नहीं? और देवी भागवत पढ़ेंगे तो क्या उसका नाम शक्ति हो गया, है ना? स्वरूप से ना गणेश है, ना शिव है, ना ब्रह्मा आदि कुछ भी नहीं है स्वरूप से, है ना? लेकिन आपकी भावना जैसी होगी, आपका संसर्ग अभ्यास जिसमें होगा, आत्मा तत्रूप हो जाता है, ऐसा है। इसलिए यहां पर बोलते एवं धर्मान पृथक, आत्मा के भेद को जो देखता है कोई तो भेद को ही प्राप्त करेगा, है ना? जिस शरीर में अहमता करता है वही तद्रूप हो जाता है, मनुष्य देवता आदि हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया? बंधन हो गया, भेद दर्शन से बंधन होता है, ये तात्पर्य है। और दृष्टांत क्या है? जथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृक एव भवति एवं मुनिर बीजानतः आत्मा भवति गौतम। उपसंहार करते हैं, हे गौतम, नचिकेता के लिए बोलते हैं, दृष्टांत है। देखो शुद्धे आसिक्तम उदकम शुद्धम, कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल है, गंगा जी का जल शुद्ध जल है, है ना। और उसमें यदि आपने शुद्ध जल को डाल दिया तो क्या होगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा कि नहीं, वो भी शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि जो तत्पदार्थ है, तत्पदार्थ माया को छोड़ने पर, माया को छोड़ने पर और माया के कार्य को छोड़ने पर जो तत्पदार्थ शोधित है, चेतन, शुद्ध चेतन जिसको लक्षार्थ बोलते हैं, और उसी में यदि तम पदार्थ को शोधन करके एक कर दिया, भेद नहीं रहेगा, देखो, है ना। ये किसका पहले शोधन करना चाहिए भैया, तत्पदार्थ का करना चाहिए कि तम पदार्थ का करना चाहिए? तम पदार्थ का पहले करना पड़ता है। ये रमण महर्षि यही कहा कि मैं का स्वरूप क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, ये पहले तुम जानो तो तुम्हारा स्वरूप कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद तत्पदार्थ को शोधन कर सकते हैं, है ना। इसलिए जितने भी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया है अपवाद करके, काहे के लिए, इसको शोधन के लिए, शोधन के लिए, है ना। यदि यहां पर आप सुनते हैं तो इसके साथ साथ आप लोग क्या करें कि मनन भी करते रहना चाहिए, मनन भी करते रहना, नहीं तो सुनते रह जाएंगे, देखो सुनते रह जाएंगे, केवल श्रवण में नहीं रहना चाहिए। अब वेदांत आप श्रवण करते हैं और मान लीजिए बाहर कोई आएगा भिखारी, है ना, तो भिखारी आएगा उसका भी स्वरूप परमात्मा है कि नहीं, बोलो। परमात्मा तो अनेक रूप में आएंगे, है ना। परमात्मा में उधर आ गया भिखारी बन करके और सभी लोग उसको डांटेंगे, अरे भगवान हो कोई भी हो, ये मांगने का समय है क्या, है। अभी वेदांत की चर्चा सुन रही है, चल रही है, और अभी मांग रहे, देखो ना ये मांगने का समय है ना मांगने का स्थान है। ये भाव यदि आता हो तो समझ लो कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है, है ना। इसलिए वेदांत का श्रवण करते करते साथ साथ में आप विचार करेंगे तो मनन भी हो जाएगा। जब तक मनन नहीं करते हैं ये तत्पदार्थ तम पदार्थ का शोधन नहीं हो सकता है। जब तक शोधन नहीं हो सकता है तत्त्वमसि का महावाक्य का अर्थ, अहम् अस्मि ब्रह्म का महावाक्य का अर्थ ये जीवन में नहीं उतरेगा। ये हमको यहां पर आकर के प्रसन्नता होती है। हम जब पहले आते थे, काशी जाते थे पढ़ने के लिए, तो हम उस समय तो बोलते थे भाई मुंबई जाना चाहिए, वहां पर वेदांत का श्रवण चलता, हमको भ्रांति होती थी, सच्ची बात बताता हूं। जिससे हम अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे काशी में, हमको भ्रांति होती थी, माया नगरी में वेदांत का श्रवण कैसे होगा, वहां पर तो भाई दाऊद जैसे आदमी है सच्ची बात कह रहा हूं, वहां पर जो वेदांत की चर्चा कैसे हो सकती है। लेकिन हमारे महाराज समझाते ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी अच्छे अच्छे साधक है, तो जब यहां आए तो हमारी भ्रांति दूर हुई। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा से, संतों की कृपा से ये वेदांत की चर्चा माया नगरी में भी हो रही है, ये सब देख करके हमको प्रसन्नता होती है, और यहाँ पर वेदांत चर्चा करने का सौभाग्य भी हमको प्राप्त होता है। जिन महापुरुष के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, हमको यहाँ पर बैठ करके चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन महापुरुष के प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, और यह संस्था को, संस्था के जो कार्यकर्ता लोग चला रहे हैं उनके प्रति भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार आप यहां पर वेदांत का श्रवण करें, मनन निध्यासन करें, इसी के लिए ही मनुष्य जन्म है, और करते करते शरीर छूट जावे, तत्पदार्थ में लीन हो जावे, तो ये जीवन सार्थक होगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत।